आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अन्विता कुमारी और हम पढ़ रहे थे आपकी पुस्तक क्षितिज का पार्ट 5। नाना साहब की बेटी मैना देवी को भस्म कर दिया गया, जिसकी लेखिका थी चपला देवी। चपला देवी ने इसमें एक सच्ची घटना का वर्णन किया है कि कैसे नाना साहब की बेटी मैना को जला दिया गया था। तो ये पूरा पार्ट हम पढ़ चुके थे, आज हमें करने थे इसके प्रश्नोत्तर। प्रश्न अभ्यास के लिए आप लोग आ जाइए अपनी अपनी बुक्स के पेज नंबर 55 पर। तो पेज नंबर 55 पे यहाँ पढ़ती हूँ पहला प्रश्न। बालिका मैना ने सेनापति हे को कौन कौन से तर्क देकर महल की रक्षा के लिए प्रेरित किया? इसके उत्तर में आप बताएंगे, बालिका मैना ने अपने पिता के महल की रक्षा के लिए सेनापति हे को ये तर्क दिए। ठीक है, ऐसे लिखेंगे और फिर लिखेंगे, उन्होंने मैना ने पहले उन्हें कहा कि इस महल को गिराने से आपका कोई भी उद्देश्य पूरा नहीं होगा। दूसरा तर्क उन्होंने दिया कि अंग्रेजों के विरुद्ध उनके पिताजी ने शस्त्र उठाए हैं, लेकिन ये जो मकान है ये कोई जीवित पदार्थ तो है नहीं, तो इसमें इसका कोई भी अपराध नहीं है। और तीसरा सबसे मुख्य तर्क जो मैना ने दिया वो यह कहा कि मैं आपकी पुत्री मैरी की सहेली हूँ। ठीक है, इसीलिए आपको मेरी और इस महल की रक्षा करनी चाहिए। अब आते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। तो प्रश्न संख्या 2 है, मैना जड़ पदार्थ मकान को बचाना चाहती थी पर अंग्रेज उसे नष्ट करना चाहते थे, क्यों? इसके उत्तर में आप लिखेंगे, मैना अपने मकान को बचाना चाहती थी क्योंकि वो बचपन उसने अपना पूरा बचपन वहीं गुजारा था। हम सभी को अपने घर से बहुत प्यार होता है, वो उसकी पैतृक धरोहर थी, उसमें उसने अपना बचपन बिताया, इसलिए उसकी बचपन की माता पिता की परिवार की यादें उसमें समाई हुई थी और इसीलिए वो उसी के अपने महल के सहारे ही जीना चाहती थी और उसे बचाना चाहती थी। दूसरा, नाना साहब ने अंग्रेजी सरकार को बहुत ही ज्यादा परेशान कर रखा था, उनको हानि पहुंचाई थी, इसीलिए अंग्रेज नाना साहब और उनसे जुड़ी हर वस्तु से हर चीज से चिढ़ते थे और वो राजमहल उन्हें लगता था कि ये नाना साहब की निशानी है, यानी ये हमारे दुश्मन की चीज है, इसे हमें मिट्टी में मिलाना देना होगा, इसे हमें नष्ट कर देना चाहिए ताकि कोई भी अंग्रेजों के खिलाफ आवाज ना उठा सके और सबको समझ आ जाए जो अंग्रेजों का विरोध करेंगे उनके साथ क्या हाल होगा, इसीलिए वो उस राजमहल को नष्ट कर देना चाहते थे। प्रश्न संख्या 3 देखिए, सर टॉमस हे के मैना पर दया भाव के क्या कारण थे? यानी जो सेनापति हे थे उन्होंने मैना पर क्यों दया दिखाई, क्या कारण हो सकते हैं? तो उसमें आप लिखेंगे, मैना जो थी वो सर टॉमस हे की मृत पुत्री मैरी की बहुत ही प्यारी सखी थी या सहेली थी। दूसरा, सेनापति हे जब तब उनके घर आते थे मैना के साथ वो खेलते थे, अपनी बेटी के समान ही उसे बहुत ज्यादा प्यार भी करते थे और मैना में ही कहीं ना कहीं उन्हें अपनी बेटी की झलक मिल रही थी, इसी वजह से उनके मन में एक पिता का प्यार जाग गया। इन्हीं कारणों से मैना के प्रति उनके मन में दया का भाव जागा था। आगे देखिए प्रश्न संख्या 4, मैना की अंतिम इच्छा थी कि वह उस प्रासाद के ढेर पर बैठकर जी भरकर रोले, लेकिन पाषाण हृदय वाले जनरल ने किस भय से उसकी इच्छा पूर्ण ना होने दी? तो आप लिखेंगे, मैना जो थी वो अपने महल के ढेर पर बैठ के जी भर के रो लेना चाहती थी, यही उसकी अंतिम इच्छा थी। उसने कहा कि मुझे थोड़ा सा समय दे दीजिए, मैं थोड़ी देर यहाँ बैठ के जी भर के रो लेना चाहती हूँ, उसके बाद आप मुझे ले चलिएगा। लेकिन पाषाण हृदय या फिर आप लिखिए पत्थर दिल जनरल आउटरम ने उसकी यह इच्छा भी पूरी नहीं होने दी क्योंकि उसके मन में यह भय था, यह डर था कि नाना साहब की बेटी के प्रति अगर उसने थोड़ी सी भी दया दिखा दी, थोड़ी सी भी सहानुभूति दिखा दी, तो ब्रिटिश सरकार का गुस्सा उसी पर फूट पड़ेगा, उसे इसके लिए किसी तरह का दंड भी मिल सकता है और जो अंग्रेजी नागरिक थे, सामान्य अंग्रेजी नागरिक थे, वो भी क्रोध से इस कदर पागल हो रखे थे कि वो आउटरम पर ही अपनी नाराजगी अपना क्रोध व्यक्त करेंगे। इसीलिए उसने मैना की इस छोटी सी इच्छा को भी पूरी ना होने दिया और हथकड़ी डाल के मैना को अपने साथ बंदी बनाकर ले गया। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। अब देखिए प्रश्न संख्या 5, बालिका मैना के चरित्र की कौन कौन सी विशेषताएं आप अपनाना चाहेंगे और क्यों? ठीक है, तो उसके व्यक्तित्व में, मैना के व्यक्तित्व में आपको कौन सी बातें अच्छी लगी, आप क्या चाहेंगे कि ऐसी बातें आपके अंदर भी आ जाएं, और क्यों, वो गुण आपको क्यों अच्छे लगे, ये भी आपको बताना है। तो आप बताएंगे मैना के चरित्र से हम देश प्रेम की भावना, बहादुरी, स्पष्ट बोल पाना, भावुकता और तर्कशीलता, ये सारी विशेषताएं अपनाना चाहेंगे। ठीक है, फिर से रिपीट कर रही हूँ, 5 विशेषताएं मैंने लिखवाई हैं, लिख लीजिए ध्यान से। देश प्रेम की भावना, बहादुरी, स्पष्ट बोलना, भावुकता और तर्कशीलता, ये 5 गुण, ये 5 विशेषताएं हम अपनाना चाहेंगे, क्योंकि इन्हीं गुणों से मनुष्य का चारित्रिक विकास होता है ना, वो मनुष्य अपना भी विकास कर पाता है, अपने देश का, अपने समाज का विकास भी कर पाता है, इसीलिए हम इन विशेषताओं को अपनाना चाहेंगे। आगे देखिए प्रश्न संख्या 6, टाइम्स पत्र ने 6 सितंबर को लिखा था, बड़े दुख का विषय है कि भारत सरकार आज तक उस दुर्दांत नाना साहब को नहीं पकड़ सकी, इस वाक्य में भारत सरकार से क्या आशय है? ये पंक्तियां क्या छपी थी टाइम्स में, टाइम्स नामक एक समाचार पत्र निकलता था लंदन में, उसमें 6 सितंबर को क्या छपा था कि बड़े दुख का विषय है कि भारत सरकार आज तक उस दुर्दांत नाना साहब को नहीं पकड़ सकी। यहाँ पे जो भारत सरकार है उससे क्या आशय है, क्या अर्थ है, ये आपको बताना है। तो इसमें आप लिखेंगे, यहाँ भारत सरकार से आशय है ब्रिटिश शासन के अंदर जो भारत सरकार चल रही थी, वो उसे भारत सरकार कहते थे क्योंकि वो भारत में थी, लेकिन असल में वो भारत की सरकार थी ही नहीं, वो अंग्रेजों की सरकार थी, उसे अंग्रेज अधिकारी ही चलाते थे, ब्रिटिश शासन था, हमारा कोई भी शासन नहीं था, हम तो गुलाम थे, लेकिन फिर भी वो भारत सरकार ही कहते थे क्योंकि ये ब्रिटिशर्स की चालाकी थी कि शासन खुद ही करते थे, लेकिन नाम भारत सरकार उन्होंने दे रखा था। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए, पेज नंबर 56 पर, यहाँ आपको रचना और अभिव्यक्ति के 4 प्रश्न दिए गए हैं। तो पहले देखिए प्रश्न संख्या 7, स्वाधीनता आंदोलन को आगे बढ़ाने में इस प्रकार के लेखन की क्या भूमिका रही होगी? इसमें आप लिखेंगे, स्वाधीनता आंदोलन को आगे बढ़ाने में इस तरह के लेखों की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही होगी, क्योंकि उस समय समाज में लोगों को यह संदेश पहुंचाना था कि अंग्रेजों के अत्याचार कैसे बढ़ रहे हैं, है ना, हमें उनके विरुद्ध आवाज उठानी होगी। जब मैना जैसी छोटी सी बालिका इतनी निडरता से उनका सामना कर सकती है, तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते, और उस छोटी सी बच्ची का इन्होंने ऐसी निर्दयता से हत्या कर दी, है ना, तो किसी का भी जो दिल होगा उस समय करुणा से भर गया होगा, वो उसकी देशभक्ति की भावना, उसकी बलिदान से प्रेरणा लेके अपने देश के लिए कुछ ना कुछ अवश्य करना चाहेंगे, इसीलिए ये जो भाव लोगों के मन में जागृत हुए होंगे उससे स्वाधीनता आंदोलन को आगे बढ़ने में जरूर ही मदद मिली होगी, इसीलिए ऐसे लेख उस समय जागरूकता फैलाने के लिए, लोगों के मन में देशभक्ति की भावना बढ़ाने के लिए लिखे जाते थे। आगे देखिए प्रश्न 8, कल्पना कीजिए कि मैना के बलिदान की यह खबर आपको रेडियो पर प्रस्तुत करनी है, इन सूचनाओं के आधार पर आप एक रेडियो समाचार तैयार करें और कक्षा में भावपूर्ण शैली में पढ़ें। ठीक है, तो आपको क्या बताना है, जैसे कि ये रेडियो चैनल पे खबर आ रही है और ऐसी खबरें अक्सर आकाशवाणी केंद्र पे आती है, ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, आप कैसे इसको लिख सकते हैं, मैं आपको थोड़ी सी हिंट दे रही हूँ, और आप चाहे तो इसको बदल के कुछ अपने तरीके से नएपन के साथ भी लिख सकते हैं। तो आप लिखेंगे, नमस्कार, ये है आकाशवाणी का केंद्र और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का कानपुर चैनल। आज रात्रि के संध्या समाचारों में मैना देवी के बलिदान पे एक समाचार सुनाया जाएगा और इस समाचार की प्रस्तुतकर्ता हैं श्री साधना शर्मा जी। अब समाचार शुरू होंगे 8 बजे। अत्यंत दुख के साथ यह सूचित किया जाता है कि कल सायंकाल के समय मैना देवी का दुखद देहांत हो गया है, उनकी अंग्रेज सरकार ने बहुत ही निर्ममता से हत्या कर दी है। समाचार यह है कि अंग्रेजी जनरल आउट्रम ने पूरी अमानवीयता दिखाते हुए छोटी सी बच्ची मैना देवी को आग में जलाकर भस्म कर दिया। पूरा का पूरा शहर शोक में डूबा हुआ है, साथ ही उनमें दुख के साथ साथ क्रोध की भावना भी जगी हुई है। भले ही मैना देवी आज इस संसार को त्याग कर परलोक में चली गई हैं, लेकिन हम उनका ये बलिदान व्यर्थ नहीं जाने देंगे। उनका ये बलिदान आने वाले समय में हर पीढ़ी को, देशवासियों को देश के प्रति बलिदान देने की प्रेरणा देता रहेगा। मैना देवी का बलिदान हम विफल नहीं जाने देंगे और अपने देश को स्वतंत्र करवा के ही रहेंगे। धन्यवाद। ठीक है, इस तरीके से आप एक रिपोर्ट, एक समाचार आप तैयार कर सकते हैं। अब देखिए प्रश्न 9। इस पाठ में रिपोर्टाज के प्रारंभिक रूप की झलक मिलती है, लेकिन आज अखबारों में अधिकांश खबरें रिपोर्टाज की शैली में लिखी जाती हैं। आप क कोई दो खबरें किसी अखबार से काटकर अपनी कॉपी में चिपकाइए तथा कक्षा में पढ़कर सुनाइए। ठीक है, कोई भी खबरें, इसमें क्या करना है, आप अखबार से छांट सकते हैं, अपनी कॉपी में चिपकाएं और अगले दिन कक्षा में आकर उन खबरों को आपको सुनाना है। ठीक है, बस इतना ही इसमें करना है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। कोई भी खबर, जैसे कहीं पे बाढ़ आ जाती है या फिर कोई सैनिक जो है, आजकल हमारे सैनिक जो शहीद हुए हैं उनकी खबर आती है, वो आप छपवा सकते हैं। या जैसा कि आपने पढ़ा था, सबसे बड़ी खबर आई थी जब भारत पहली कोशिश में मंगल तक पहुंच गया था, है ना, और चीन के साथ बॉर्डर पर लड़ाई करते हुए हमारे 20 सैनिक शहीद हो गए थे, उनकी श्रद्धांजलि की जो खबरें आई थी वो आप छाप सकते हैं। या कोई और खबर जो आपको लगता है, कहीं पे कोई प्राकृतिक आपदा आई है, जैसे तूफान, बाढ़, जैसे उड़ीसा में भी अभी अम्फान आया था, है ना, ऐसी कोई भी खबर आपको अखबार में मिलती है, वैसी दो खबरें आप छांटिए अपने अनुसार जो आपको अच्छी लगे और उनको कॉपी में चिपका लाइए। अगले दिन उन खबरों को समाचार की शैली में, जिसे आपने सुना होगा समाचार कैसे रेडियो पे सुना होगा, टीवी पे सुना होगा कि कैसे सुनाए जाते हैं, उसी शैली में उसको प्रस्तुत करने का प्रयास आप करेंगे। ठीक है, बस इतना सही प्रश्न है, आसान है। खा वाला हिस्सा देखिए इसका। अपने आसपास की किसी घटना का वर्णन रिपोर्टाज शैली में कीजिए। अब आपको अपने आसपास कोई भी घटना जो हुई हो उसकी बारे में लिखना है, लेकिन रिपोर्टाज यानी रिपोर्ट की शैली में लिखना है। ठीक है, जैसे आप लिख सकते हैं, कल NH-24 हाईवे पर सोमवार को सड़क दुर्घटना में एक कार और बाइक की भिड़ंत हो गई, जिसमें बाइक सवार युवक की मृत्यु हो गई और कार चलाने वाले व्यक्ति की हालत गंभीर है। घायल कार वाले को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती करवाया है और मृतक के परिवार को सूचना दे दी गई है। डॉक्टरों ने मृतक का नाम, उसकी पहचान की है, उसका नाम अमर शर्मा बताया गया है और वही कार चालक का नाम राहुल वर्मा बताया गया है। उसकी हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है और देखते हैं कि उनका अब क्या होता है। ठीक है, इस तरीके से आप एक रिपोर्ट या कोई भी और घटना जो आपके आसपास हुई है उसका वर्णन करते हुए तैयार कर सकते हैं। मैंने ये हिंट दे दिया आपको सिर्फ। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न संख्या 10। आप किसी ऐसे बालक बालिका के बारे में एक अनुच्छेद लिखिए जिसने कोई बहादुरी का काम किया हो। आपको स्टूडेंट्स पता होगा कि 26 जनवरी को बच्चों को वीरता पुरस्कार दिए जाते हैं, है ना। लाल रंग की ड्रेस पहन के हाथी पर पहले वो बच्चे आते थे और उनको वीरता पुरस्कार दिया जाता था। अब वो हाथी पे नहीं आते, अब वो जीप पर आते हैं, समय बदल गया है। लेकिन जिन बच्चों ने कुछ ना कुछ बहादुरी का काम किया होता है उनके बारे में वहां बताया जाता है और उनको सम्मानित किया जाता है। तो ऐसे ही किसी बच्चे के बारे में अगर आपको पता हो या आपके आसपास कोई ऐसा बच्चा हो जिसने कोई बहुत ही बहादुरी का काम किया हो, तो आपको उसके बारे में एक अनुच्छेद लिखकर इसमें बताना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, भाषा अध्ययन। तो भाषा अध्ययन में जैसा कि आपको पता है व्याकरण संबंधी प्रश्न होते हैं। यहाँ एक ही प्रश्न है, पढ़ देती हूँ आपके लिए, प्रश्न संख्या 11। भाषा और वर्तनी का स्वरूप बदलता रहता है। इस पाठ में हिंदी गद्य का प्रारंभिक रूप व्यक्त हुआ है जो लगभग 75-80 वर्ष पहले था। इस पाठ के किसी पसंदीदा अनुच्छेद को वर्तमान मानक हिंदी रूप में लिखिए। अब देखिए, जो भाषा है, भाषा कहने का, लिखने का तरीका, वर्तनी यानी स्पेलिंग्स लिखने का तरीका, वो बदलता रहता है समय के साथ। और ये जो पाठ है वो कब लिखा गया था, लगभग 75 से 80 साल पहले। उस समय हिंदी गद्य का लिखने का तरीका अलग था। अब आप इसमें से पाठ में से कोई भी एक अनुच्छेद को चुन लीजिए जिसे आपको मानक हिंदी यानी आज की जो हिंदी जो चल रही है, आज की जो भाषा चल रही है, उस रूप में आपको लिखना है। ठीक है, कोई भी आप चुन सकते हैं। तो इसमें हम शुरू वाला ही एक अनुच्छेद चुनेंगे और उसको आप कैसे लिखेंगे। कानपुर में घटित हत्याकांड के बाद अंग्रेजी सैनिक दल बिठूर की ओर गया। बिठूर में स्थित नाना साहब का राजमहल अंग्रेजों द्वारा लूट लिया गया, लेकिन अंग्रेज अधिक नुकसान नहीं कर पाए। पूर्ण विराम। इसके बाद अंग्रेजों ने तोप द्वारा नाना साहब के महल को उड़ा देना चाहा, कौमा, तभी महल के बरामदे में एक सुंदर बालिका आकर खड़ी हो गई। पूर्ण विराम। यह देखकर अंग्रेजी सेना को हैरानी हुई क्योंकि महल को लूटते समय यह बालिका वहां दिखाई नहीं दी। पूर्ण विराम। अब इसमें यहाँ पे हमने छोटे छोटे वाक्यों के बाद ही पूर्ण विराम का इस्तेमाल किया है, लेकिन जब ये जो हमने पाठ पढ़ा, इसमें चपला देवी का जो हमने पाठ पढ़ा, इसमें लेखिका ने काफी लंबे लंबे वाक्यों के बाद वो वहां पे क्या किया है, पूर्ण विराम दिया है ना। और इसमें पुराने वाले अनुच्छेद में सेमी कोलन का उपयोग किया गया है जबकि नए वाले में कोमे का उपयोग किया गया है। ठीक है, तो ज्यादा बहुत ज्यादा बदलाव नहीं है, फिर भी जो बदलाव है वो हमें इसमें बताने होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाठेतर सक्रियता। पाठेतर सक्रियता में यहाँ पे आपको तीन बिंदु दिए गए हैं। देखिए, पहला, अपने साथियों के साथ मिलकर बहादुर बच्चों के बारे में जानकारी देने वाली पुस्तकों की सूची बनाइए। यानी आप पता कीजिए अपने साथियों के साथ मिलकर कि कौन सी पुस्तकों में बहादुर बच्चों के बारे में किससे कहानियां छपते हैं और उनको आप खरीद के पढ़ सकते हैं। अगला देखिए, इन पुस्तकों को पढ़िए। या आपको दो पुस्तकें दी गई हैं जो आपको पढ़नी है और आपको उसके हमारे देश के लोगों ने क्या किया है वो आपको जानकारी मिलेगी। तो पहली पुस्तक है भारतीय स्वाधीनता संग्राम में महिलाएं। ठीक है, महिलाओं का क्या योगदान था ये आपको इसमें पता चलेगा। भारतीय स्वाधीनता संग्राम में महिलाएं, जिसके लेखक हैं राजम कृष्णन, नेशनल बुक ट्रस्ट, नई दिल्ली। दूसरा है 1857 की कहानियां, ख्वाजा हसन निजामी, नेशनल बुक ट्रस्ट, नई दिल्ली। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आइए, पेज नंबर 57 पे। यहाँ पे दिया है अपठित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये एक अपठित गद्यांश है यानी जो गद्यांश आपने ना पढ़ा हो, और इसी के संबंधित आपको प्रश्न पूछे गए हैं जो आपको नीचे बताने होंगे। तो पहले आपके लिए इस गद्यांश को मैं पढ़ देती हूँ, फिर पांचों प्रश्न के उत्तर हम ढूंढेंगे। आजाद भारत में दुर्गा भाभी को उपेक्षा और आदर दोनों मिले। सरकार ने उन्हें पैसों से तोलना चाहा। कई वर्ष पहले पंजाब में उनके सम्मान में आयोजित एक समारोह में तत्कालीन मुख्यमंत्री दरबारा सिंह ने उन्हें 51,000 रुपए भेंट किए। भाभी ने वे रुपए वही वापस कर दिए। कहा, जब हम आजादी के लिए संघर्ष कर रहे थे उस समय किसी व्यक्तिगत लाभ या उपलब्धि की अपेक्षा नहीं थी, केवल देश की स्वतंत्रता ही हमारा ध्येय था। उस ध्येय पथ पर हमारे कितने ही साथी अपना सर्वस्व निछावर कर गए और शहीद हो गए। मैं चाहती हूँ कि मुझे जो 51,000 रुपए दिए गए हैं उस धन से यहाँ शहीदों का एक बड़ा स्मारक बना दिया जाए जिसमें क्रांतिकारी आंदोलन के इतिहास का अध्ययन और अध्यापन हो, क्योंकि देश की नई पीढ़ी को इसकी बहुत आवश्यकता है। मुझे याद आता है सन 1937 का जमाना, जब कुछ क्रांतिकारी साथियों ने गाजियाबाद तार भेजकर भाभी से चुनाव लड़ने की प्रार्थना की थी। भाभी ने तार से उत्तर दिया, चुनाव में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है, अतः लड़ने का प्रश्न ही नहीं उठता। मुल्क के स्वाधीन होने के बाद की राजनीति भाभी को कभी रास नहीं आई। अनेक शीर्ष नेताओं से निकट संपर्क होने के बाद भी वे संसदीय राजनीति से दूर ही बनी रही। शायद इसीलिए अपने जीवन का शेष हिस्सा नई पीढ़ी के निर्माण के लिए अपने विद्यालय को उन्होंने समर्पित कर दिया। ठीक है, तो ये हमने दुर्गा भाभी के बारे में एक अनुच्छेद पढ़ा, जिन्होंने हमारा स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था उसमें इनका भी काफी बड़ा योगदान रहा था। ठीक है, इनके बारे में आप और जानकारी एकत्रित करें, पूरी कहानी को पढ़ें। पहले हम प्रश्न देख लेते हैं, पांच प्रश्न है। पहला है, स्वतंत्र भारत में दुर्गा भाभी का सम्मान किस प्रकार किया गया। तो इसमें हम लिखेंगे, स्वतंत्र भारत में उनका सम्मान उन्हें 51,000 रुपए भेंट करके किया गया। उस समय के पंजाब के मुख्यमंत्री दरबारा सिंह ने उन्हें 51,000 रुपए भेंट के रूप में स्वीकार वो प्रदान किए थे। अब प्रश्न दो देखिए। दुर्गा भाभी ने भेंट स्वरूप प्रदान किए गए रुपए लेने से इनकार क्यों कर दिया, यानी उन्हें जो भेंट में जो सम्मान के रूप में 51,000 रुपए मिले थे वो उन्होंने स्वीकार क्यों नहीं किए? तो इसमें आप क्या बताएंगे, दुर्गा भाभी को जब भेंट स्वरूप सम्मान के लिए 51,000 रुपए दिए गए तो उन्होंने वो मना कर दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि जब हम आजादी के लिए लड़ रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, तो हमने अपने लाभ के बारे में, अपने स्वार्थ के बारे में तो कभी सोचा ही नहीं था। हम तो केवल देश प्रेम की भावना से कर रहे थे और हमारा उद्देश्य केवल कितना था कि हम देश को आजादी दिलवा सके। इसीलिए मैं ये रुपए स्वीकार नहीं कर सकती और ना ही करूंगी। फिर भी ये जो रुपए आप मुझे देना चाहते हैं, मैं चाहती हूँ कि इससे आप यहाँ पे शहीदों के लिए, जो जितने लोगों ने हमारे देश के लिए बलिदान दिया, अपने जान कुर्बान कर दिए, अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, उनके लिए मैं यहाँ एक स्मारक बनवाना चाहती हूँ, ताकि उस स्मारक में क्या किया जाए, जो भी क्रांतिकारी आंदोलन था, जिन लोगों ने आंदोलन में हिस्सा लिया, क्रांति की, देश पे अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, उनके बारे में जो नई पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी, उसको पढ़ाया जाए। इसको पढ़ाने पढ़ाने का काम, पढ़ाने और पढ़ने का काम यहाँ होना चाहिए, ताकि लोगों को जानकारी मिले और जो आने वाली पीढ़ी है उसको पता चले कि आज़ादी इतनी आसानी से नहीं मिली है, इसीलिए वो इस आज़ादी की कीमत को भी समझें और जो हमारे शहीद हैं उनके प्रति, उनके उनमें एक श्रद्धा का भाव रहे, सम्मान का भाव रहे और देश प्रेम की भावना भी हमेशा हमेशा के लिए उनमें जीवित रहे। ठीक है, प्रश्न तीन देखिए। दुर्गा भाभी संसदीय राजनीति से दूर क्यों रही? तो इसमें आप लिखेंगे, दुर्गा भाभी का हालांकि काफी नेताओं से संपर्क था, जान पहचान थी, फिर भी वो संसदीय राजनीति से दूर ही रही, क्योंकि जो जब हमारा देश आजाद हो गया, है ना, आजाद हो गया, उसके बाद जो हमारे देश में राजनीति शुरू हुई वो उन्हें कभी भी पसंद नहीं आई, उन्हें अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उसमें एक स्वार्थ की भावना थी, हर इंसान अपने बारे में सोचने लगा था। देश में जब देश आजादी के लिए लड़ रहा था तो जो एकजुटता लोगों में थी वो अब खत्म होती दिखाई दे रही थी और स्वार्थ की भावना बढ़ती हुई दिखाई दे रही थी। आगे देखिए प्रश्न चार, आजादी के बाद उन्होंने अपने को किस प्रकार व्यस्त रखा? तो इसमें हम बताएंगे, उन्होंने आजादी के बाद अपना जीवन अपने विद्यालय को समर्पित कर दिया। ठीक है, उन्होंने एक विद्यालय बनवाया था और वही वो नई पीढ़ी को विकसित कर सके, उनको, उनका अच्छे से, उनके व्यक्तित्व का निर्माण कर सके, यही उनकी कोशिश रहती थी। और आजादी के बाद का उन्होंने अपना सारा जीवन उस विद्यालय के लिए, उस विद्यालय में आने वाले बच्चों के लिए, हमारी भावी पीढ़ी के लिए समर्पित कर दिया। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न पांच, दुर्गा भाभी के व्यक्तित्व की कौन सी विशेषताएं आप अपनाना चाहेंगे? तो इस अनुच्छेद को पढ़कर आपको क्या लगा कि वो कैसी थी, क्या समझ में आया, ये आपको बताना है कि आपको उनमें जो अच्छा लगा आप क्या अपनाना चाहेंगे, कौन सा उनका गुण। तो वैसे इस प्रश्न का उत्तर आप अपने इच्छा अनुसार, अपनी समझ के अनुसार दीजिए कि आपको क्या समझ में आया, लेकिन फिर भी मैं थोड़ी सी हिंट के तौर पे आपको यह बता देती हूँ कि आप लिख सकते हैं कि दुर्गा भाभी के मन में जो देश प्रेम की भावना थी, जो त्याग की उनकी भावना थी, जिसे उन्होंने रुपए स्वीकार नहीं किए, और जो स्वाभिमान था उनमें, है ना, साथ ही परोपकार की भावना थी, स्वार्थ की भावना नहीं थी, ऐसे कुछ गुण उनके व्यक्तित्व के जो गुण थे उन्होंने हमें प्रभावित किया और वही गुण हम अपनाना चाहेंगे। ठीक है, कौन सी चीजें, मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ, देश प्रेम की भावना, त्याग की भावना और परोपकार की भावना, स्वार्थ की भावना से दूर और स्वाभिमान की भावना, ये उनके व्यक्तित्व के ऐसे गुण थे जिन्हें हम अपनाना चाहेंगे। ठीक है, तो ये आपके अपठित गद्यांश के प्रश्नोत्तर भी हो गए। अपठित गद्यांश जितने भी आते हैं वो आपको जरूर करने चाहिए, क्योंकि अक्सर परीक्षा में एक अपठित गद्यांश जरूर आता है जो आपको समझ में आना चाहिए कि उसको कैसे पढ़ना है, कैसे समझना है और कैसे उसके प्रश्नोत्तर को हल करना है। ठीक है, आपको ये प्रश्नों के उत्तर ढूंढने आने चाहिए, जो आपने ना पढ़ा हो उसका भी। अब आ जाइए नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 58 पे। शब्द संपदा यानी पाठ के दौरान जो कठिन शब्द आए हों उनके अर्थ आपको बताए गए हैं, लेकिन ये ज्यादा कठिन शब्द इस पाठ में इस्तेमाल ही नहीं किए थे, काफी सरल और सहज भाषा में पाठ को चपला देवी ने, लेखिका ने लिख दिया। फिर भी 3 शब्द यहाँ पे दिए गए हैं जिनके अर्थ ये आपको बता रहे हैं। अल्प वयस यानी कि कम उम्र, भग्नावशिष्ट यानी खंडर, इतिहास वेत्ता इतिहास का जानकार। ठीक है, बस 3 ही शब्द हैं यहाँ पे, अल्प वयस यानी कि कम उम्र, भग्नावशिष्ट यानी खंडर, इतिहास वेत्ता यानी इतिहास का जानकार, जिसको इतिहास की जानकारी हो। आगे देखिए, यह भी जाने जैसे कि हर पाठ के अंत में आपको दिया जाता है कुछ अतिरिक्त जानकारी आपको दी जाती है, वही देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, हिंदू पंच जिसका नाम पाठ के दौरान आया था। ये हिंदू पंच असल में क्या है इसके बारे में देखिए। अपने समय की चर्चित पत्रिका हिंदू पंच का प्रकाशन 1926 में कलकत्ता से हुआ। इसके संपादक थे ईश्वरी दत्त शर्मा। 1930 में इसका बलिदान अंक निकला, जिसे अंग्रेज सरकार ने तत्काल जब्त कर लिया। चांद के फांसी अंक की तरह यह भी आजादी का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इस अंक में देश और समाज के लिए अपनी जान न्यौछावर करने वाले व्यक्तियों के बारे में बताया गया है। उस समय स्टूडेंट्स क्या होता था, जो भी लेख ऐसा निकलता था किसी समाचार पत्र में, पत्रिका में, या किसी लेखक की रचना ऐसी, कविता या कहानी ऐसी छपती थी जो अंग्रेजों को लगता था कि उनके विरुद्ध है या फिर लोगों में देश प्रेम की भावना जगाने के लिए है, तो वो उसे तुरंत जब्त कर लेते थे, लोगों तक उसे पहुंचने ही नहीं देते थे। तो ऐसे ही उस समय हिंदू पंच नाम की एक पत्रिका निकलती थी, जिसका प्रकाशन 1926 में शुरू हुआ था कलकत्ता से, और इसके संपादक कौन थे, ईश्वरी दत्त शर्मा। तो 1930 में इन्होंने इसका एक बलिदान अंक निकाला था, जिसे हर बार अलग अलग अंक निकलते हैं, और इस बलिदान अंक में उन्होंने उन लोगों के बारे में लिखा था जिन्होंने देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी, उनके बलिदान के बारे में इसमें दिया गया था। और इसी अंक में ये मैना देवी की कहानी भी छपी थी, लेकिन अंग्रेजों ने इसे तुरंत ही जब्त कर लिया था, लोगों तक पहुंचने ही नहीं दिया था। लेकिन ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण दस्तावेज था, एक महत्वपूर्ण लेख था, पर आजादी की कहानी होने के कारण अंग्रेजों के अत्याचार का इसमें वर्णन था, इसी वजह से अंग्रेजों ने लोगों तक इसे पहुंचने ही नहीं दिया। ऐसे ही एक और पत्रिका थी चांद, उसका भी फांसी नाम का अंक निकला था, उसे भी अंग्रेजों ने जब्त कर लिया था। आपको बता दूं मैं, जब प्रेमचंद जी ने शुरुआती रचनाएं लिखी तो उनके भी रचना का एक काफी महत्वपूर्ण हिस्सा सोझे वतन, वो भी अंग्रेजों ने जब्त कर लिया था। तो कोई भी चीज जो अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध होती थी वो लोगों को लिखने ही नहीं दिया जाता था, लेखकों को कष्ट दिया जाता था। ये उस समय का बहुत ही बुरा हिस्सा था। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, तो ये आपका पार्ट यहाँ पे पूरा हो जाता है। मिलते हैं अगले ऑडियो में अगले पार्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।